नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक का मुख्य विषय है नैतिक शिक्षाएं और इसके मुख्य लेखक हैं राजा सुलेमान। श्रोताओ, इस पुस्तक की नैतिक शिक्षाएं बहुत ही उच्च कोटि की हैं। ईमानदारी, सच्चाई तथा जीवन और संपत्ति का मान करने पर जोर दिया गया है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे दूसरों से न्याय, प्रेम और दया का व्यवहार करें। श्रोताओ, यहाँ पर एक उत्तम पारिवारिक जीवन का वर्णन किया गया है जिसमें बच्चों का सतर्कता पूर्वक प्रशिक्षण किया जाता है और स्त्रियों का सम्मान होता है। लेखक अपने ही अधिकार का प्रयोग करके मानो यहोवा की ओर से कहता है, सच्चरित्र जीवन व्यतीत करने के उचित सिद्धांत अमुक हैं। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु,
जय 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 यीशु,
Oh, प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों हम इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे थे। यह नए नियम की एक पत्री है और जिसका मुख्य विषय अनुग्रह था, और हमने इसमें देखा कि इस पत्री का आरंभ अनुग्रह से होता है, और फिर हमने यह भी देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें उद्धार दिलाता है और हमें थामता है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पुराने नियम की पुस्तक में से नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि आपने हम पर अपना अनुग्रह दिया है कि हम सब श्रोता भाई बहन अलग अलग जगहों में रहकर रेडियो के माध्यम से आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। आज जब हम नीति वचन की पुस्तक से अध्ययन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं, सीखते हैं, हम अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सकें। विशेष करके हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं। पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी तंदुरुस्ती दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, ताकि अपने जीवन में इस वचन को ग्रहण कर सकें, आपकी महिमा कर सकें। इस घड़ी फिर से एक बार हम इसे प्रत्येक के जीवन को और विशेष करके इस अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप हमारे साथ हों, हम हर एक से बोले और बातचीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज से हमारा अध्ययन पुराने नियम के पुस्तक नीति वचन के संग्रह से आरंभ होगा। नीति वचनों का संग्रह धर्म शास्त्र में कविताओं के संग्रह का एक भाग है। अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत आदि सब एक ही वर्ग में आते हैं। ये सब इब्रानी कविता हैं। सुलेमान इस कविता संग्रह में तीन पुस्तकों का रचयिता है, नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। नीति वचनों का संग्रह बुद्धि के वचनों की पुस्तक है, सभोपदेशक मूर्खता की पुस्तक है और श्रेष्ठ गीत प्रेमालाप की पुस्तक है। प्रेम बुद्धि और मूर्खता के मध्य आनंद का माध्यम है। सुलेमान इन तीनों विषयों का विशेषज्ञ है। पहला राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है, उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। जी हाँ, हमारे पास तो उसके 1005 गीतों में से एक ही गीत है और नीति वचन भी बहुत कम है। पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 33 और 34 पद में उसके नीति वचनों के विषय का भी उल्लेख किया गया है। फिर उसने लबानोन के देवदारों से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की है, और देश देश के लोग सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कृति सुनी थी उसकी बुद्धि की बातें सुनने आया करते थे। प्रिय मित्रों, नीति वचन की पुस्तक कहावतों और लोकोक्तियों के रूप में नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का एक संग्रह है। इनमें से अधिकांश का संबंध प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन से है। इसका आरंभ इस स्मरण पत्र के साथ होता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, अर्थात आरंभ है, और फिर न केवल धार्मिक सदाचार परंतु सामान्य ज्ञान और अच्छे आचरण से संबंधित बातों का भी वर्णन पाया जाता है। इसकी कई छोटी छोटी कहावतें प्राचीन इसराइल गुरुओं के अंतःकरण को प्रकट करती हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा। इनमें से कुछ पारिवारिक रिश्तों से संबंधित हैं, तो कुछ कार्य व्यापार से संबंधित हैं, कुछ कहावतें सामाजिक जीवन में शिष्टाचार से संबंधित हैं, तो कुछ आत्म संयम की आवश्यकता के विषय में बताती हैं। इसमें दीनता, सहनशीलता, गरीबों के प्रति आदर भाव और मित्रों के प्रति विश्वास योग्य रहने आदि गुणों के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। आज हर एक व्यक्ति के लिए इस नीति वचन की पुस्तक में कुछ न कुछ आशीष की बातें पाई जाती हैं। नीति वचनों में हम सुलेमान की बुद्धि की बातों को पढ़ते हैं। नीति वचन एक कहावत है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो किसी सत्य विशेष को सीधा और संक्षिप्त एवं सारगर्भित प्रकट करती है। नीति वचन लंबे अनुभव से निकाले गए संक्षिप्त वाक्य हैं। मेरे प्रियो, नीति वचन समझने के लिए आसान वाक्य में सत्य का प्रकाशन है। यह एक दर्शन शास्त्र है जो अनुभव और आचरण के नियम पर आधारित है। नीति वचन को सदाचार व्यक्त करने वाला वाक्य, कहावत, पुरानी लोकोक्ति, उपमाय आदि कहा गया है। इसका मुख्य पद अध्याय एक में है। एक अध्याय उसके सात पद में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल अर्थात आरंभ है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मेरे मित्रों, प्राचीन पूर्वी देश नीति वचनों का स्रोत रहे हैं। यह भी हो सकता है कि सुलेमान ने अनेक नीति वचन अन्य स्रोतों से एकत्र किए थे। वह उन सब का संपादक और कुछ का लेखक था। इसका अर्थ है कि हमारे पास नीति वचनों का जो प्रेरित संग्रह है, वह या तो सुलेमान का या अन्य स्रोतों से प्राप्त है, परंतु परमेश्वर ने उन पर अपनी मुहर लगाई है, जैसा हम आगे चल करके देखेंगे। डॉक्टर थर्टल और अन्य विचारकों ने ध्यान दिया कि नीति वचनों में द्वितीय पुरुष सर्वनाम तृतीय पुरुष हुआ है। अतः उनका कहना है कि वे नीति वचन जो द्वितीय पुरुष में हैं, सुलेमान के गुरुओं ने उसे सिखाए थे, और जो नीति वचन तृतीय पुरुष में हैं, वे सुलेमान के द्वारा लिखे नीति वचन हैं। नीति वचनों के संग्रह के नीति वचनों और अन्य लेखों के नीति वचनों में अंतर है। यूनानी विद्वान नीति वचन रचने में अद्वितीय थे, विशेष करके ज्ञानवादी कवि। मैंने यूनानी भाषा कॉलेज में पढ़ी थी और फिर सेमिनरी में उसे दोहराया। मेरे अध्ययन में ज्ञानवादी कवियों की कविताएं थी। यूनानी भाषा में वे अति स्पष्ट हैं, क्योंकि वे अधिकतर शब्दों का खेल है। मेरे विचार में हमें नीति वचन की पुस्तक के गुण और लक्षणों पर ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं, पहला, नीति वचन विज्ञान से रहित कथन और अनुचित विचार प्रकट नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए नीति वचन चार अध्याय उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यह एक असामान्य उक्ति है, क्योंकि 2700 वर्ष बाद हार्वे ने यह पता लगाया कि रक्त शरीर में प्रवाहित रहता है और हृदय उसे चलाता है। इसके विपरीत अपोक्रिफा की एक पुस्तक बरनबास की पत्री में फिनिक्स चिड़िया का उल्लेख है, जिसने आग में आत्मदाह किया और पुनर्जीवित हुई। मेरे प्रियो, यह कहानी न तो नीति वचन में और न ही बाइबल में कहीं और है। यह विचित्र बात है कि यह प्राचीन पुस्तक सैकड़ों विज्ञान संबंधित नीति वचन प्रस्तुत करती है, और उनमें से एक भी आज विज्ञान विरोधी नहीं है। इससे ही प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को सचेत हो जाना चाहिए कि नीति वचन परमेश्वर प्रेरित पुस्तक है। और दूसरी बात हम देखते हैं, नीति वचन एक ऊंचे स्तर की नैतिक शिक्षा की पुस्तक है। आप इसमें एक भी अनैतिक शिक्षा नहीं पाएंगे। जी हाँ, जस्टिन मार्टियर ने कहा था कि सुकरात प्रभु यीशु से पहले ही विश्वासी हो गया था, जो निसंदेह असंभव है। उसके अनुयायी कहते हैं कि वह नैतिकता के ऊंचे विचारों को प्रकट करता था। सुकरात ने वेश्याओं को भी आचरण के निर्देश दिए हैं। उसके विषय कहा जाता है या कहा जा सकता है कि वह न तो सदाचार और न ही दुराचार में विश्वास करता था। अब हम तीसरी बात देखते हैं। नीति वचन एक दूसरे का खंडन नहीं करते हैं, जबकि मनुष्य के नीति वचन एक दूसरे का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए देखें, कूदने से पूर्व सावधान और जो डर गया वह मर गया। मनुष्य बिन कीमत कुछ नहीं पाता और जीवन के सर्वोत्तम वस्तुएं निर्मोल होती हैं। लुढ़कते पत्थर पर काई नहीं जमती और अंडों पर बैठी मुर्गी मोटी नहीं होती। मनुष्य की कहावतों में विषमता का कारण है, विचारों में विविधता है, परंतु नीति वचन की पुस्तक में विषमता नहीं है। यही एक महान बात है, क्योंकि वह परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं। मेरे मित्रों, नीति वचन कर्मवार व्यवस्था से रहित संग्रह है, परंतु कुछ विचारकों का मानना है कि वे एक कहानी सुनाते हैं, जिसे हम अपने अध्ययन में देखेंगे। यह एक ऐसे युवक की कहानी है जो जीवन में कदम रख रहा है। उसका पहला पाठ है नीति वचन एक अध्याय उसका 7 पद, जहां पर लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल अर्थात आरंभ है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं, और यही इस पुस्तक का मुख्य विचार है। नीति वचनों के इस संग्रह में जो परामर्श दिया गया है वह सब युगों के लिए है, चाहे पुराने नियम के मनुष्य हों या नए नियम के, पुराने यरूशलेम के या नए यरूशलेम के। इसके तथ्य आज भी सत्यता से पूर्ण है। यह हर एक के लिए एक अति उत्तम पुस्तक है। जी हाँ, चाहे कोई भी क्यों ना हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी देश का निवासी क्यों ना हो, यह सब के लिए अति उत्तम पुस्तक है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि हमारे जवानों को इसे अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अब कोई आपत्ति उठाएगा, इसमें सुसमाचार से संबंधित कुछ भी नहीं है। एक मिनट ठहरिए, इसमें सुसमाचार से संबंधित बातें हैं। इस पुस्तक में जिसकी बुद्धि प्रगट है वह प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा अन्य कोई नहीं हो सकता। यह पुस्तक खिचड़ी या असंबंधित बातों का संग्रह नहीं है। यह पुस्तक सुबोध है, जबकि इसमें कर्म और व्यवस्था नहीं है। सुलेमान ने अपनी ही शिक्षा के विषय में कहा है, सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा, और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन कर्म से रखता था। जी हाँ, आपकी रुचि का यहाँ एक विचार है। नीति वचन में बाइबल के प्रत्येक नायक का विवरण है। मैं कुछ का नाम बताता हूँ, शेष को पहचानने का आनंद आप प्राप्त करें। आप यह भी देखेंगे कि कोई न कोई नीति वचन आपके मित्रों या जानकारों पर उचित बैठता है, परंतु आप उनसे यह न कहें, हम में से हर एक के लिए उपयुक्त नीति वचन इसमें है। आप भी अछूते नहीं रह सकते, यह आपके लिए भी है। इसके अध्ययन में हमें अच्छा लगेगा कि यह सबके लिए है। डॉक्टर गॉबलिन ने नीति वचन की साहित्यिक रचना का विश्लेषण किया है। इन नीति वचनों का साहित्यिक रूप दो दो पंक्तियों का है, जिसकी दोनों पंक्तियां परस्पर संबंधित हैं, जिसे इब्रानी कविता में सादृश्यता कहते हैं। इब्रानी भाषा की कविता में हमारी कविताओं के समान लय नहीं होती है। यह सादृश्यता तीन प्रकार की है, तो आइए हम इसे देखते हैं। पहला है पर्याय सादृश्यता, अर्थात पहली पंक्ति में जो कहा गया है वही विचार दूसरी पंक्ति में है। और तब हम देखते हैं उदाहरण स्वरूप नीति वचन 19 अध्याय उसके 29 पद में, ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। दूसरी बात अब हम देखते हैं विषम सादृश्यता, पहली पंक्ति में प्रकट सत्य दूसरी पंक्ति में विपरीत सत्य द्वारा पुष्ट किया जाता है। उदाहरण देखेंगे नीति वचन 13 अध्याय उसका 9 पद, लिखा है धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरी पंक्ति में सत्य वही है परंतु उसका प्रस्तुतीकरण नकारात्मक रूप से किया गया है। अब हम तीसरी बात को देखते हैं समासिक सादृश्यता, इसमें दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति का विचार विकसित करती है। उदाहरण देखेंगे नीति वचन 20 अध्याय उसके 2 पद में, राजा का भय दिखाना सिंह का गरजना है, जो उस पर रोष करता है वह अपने प्राण का अपराधी होता है। मेरे प्रिय मित्रों, इस प्रकार से हम नीति वचन की पुस्तक में बहुत सारी बातों को पाते हैं जो मूल रूप से इब्रानी भाषा की कविता है। मेरे प्रियो, नीति वचन की पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनमोल है। जब हम जवानों की बातें करते हैं तो यह युवकों को सलाह देती है, बुद्धि की पुकार है, बुद्धि के लाभ हैं, विविचार के विरुद्ध चेतावनी है, अन्य चेतावनियां भी इसमें दी गई है। और इसके साथ साथ हमें यह भी बताया गया है कि एक भले मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर की निकटता में रहना है, अर्थात एक आदर्श पत्नी के बारे में भी हम इस पुस्तक में पाते हैं। नीति वचन 31 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। मेरे मित्रों, इस प्रकार से हम एक आदर्श पत्नी के बारे में भी पाते हैं, एक भले पुरुष के बारे पाते हैं, एक साधारण मनुष्य के बारे में पाते हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि नीति वचन की पुस्तक हर एक प्रकार के व्यक्ति के लिए एक अनमोल रत्न के रूप में दिया गया है और सुलेमान ने अपने अनुभवों को हम तक पहुंचाया है ताकि हम इस पुस्तक के द्वारा से अपने जीवन में उन बातों को ग्रहण कर सकें, सीख सकें। यदि हम बुरे व्यक्ति हैं तो अच्छे बन सकें। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम आज इस पुस्तक के पृष्ठभूमि को देख रहे हैं तो आइए इस पुस्तक की पृष्ठभूमि के साथ हम अपने आप को भी तैयार करें ताकि जब हम आगे इस पुस्तक के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं तो इस बात को हम जान सकें, सीख सकें, समझ सकें और उसे ग्रहण कर सकें। इतना ही नहीं, अपने मित्रों को भी, अपने पड़ोसियों को भी इसके बारे में जानकारी दें ताकि हम इस नीति वचन को ग्रहण करने पाए। मैं इस पुस्तक को बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि यह मेरे जीवन के लिए भी बहुत लाभकारी है और मैं यही आशा करता हूं कि आप में से प्रत्येक श्रोता जो इस वचन को सुन रहे हैं आप भी इस पुस्तक का लाभ अवश्य ही अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, इस पुस्तक के उन गुण बातों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं फिर से एक बार आपको इस बात की जानकारी दे दूं कि नीति वचन की पुस्तक जो सुलेमान के द्वारा लिखी गई है इसमें कुल 31 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए कहीं न कहीं लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए इस समय हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और जब हम आगे अध्याय 1 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे तो निश्चय ही हम परमेश्वर के उन महान आशीषों की कामना करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और इस वचन के लिए कि प्रभु इस पुस्तक के द्वारा हम में से अधिक लोगों को आशीषित करें। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर से आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि प्रभु आज हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करने पाए हैं। आज जब हमने नीति वचन की पुस्तक की पृष्ठभूमि को देखा है, हमने इस बात को जान लिया है कि इस पुस्तक को आपके द्वारा से लिखा गया है, आपकी प्रेरणा पाकर के लिखा गया है, और ये हम मनुष्यों के लिए है, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए, सबके लिए है, और अच्छी पत्नी के लिए भी है, पति के लिए भी है। पिता परमेश्वर, हम यही आशा करते हैं कि जब हम इस पुस्तक का अध्ययन बारीकी से करते हैं तो आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी आशीष प्रदान करेंगे, आप मुझे आशीष प्रदान करेंगे, ताकि हर एक जीवन इस अध्ययन के द्वारा से आशीषित होने पाए। हमारे विनती उन परिवारों के लिए है जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और हमारी प्रार्थना उन जवान भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन को संसार की बुराइयों में बिता रहे हैं, व्यभिचार में, चोरी में, हत्या में या किसी प्रकार के अन्य बुरी आदतों में आप उनकी सहायता करेंगे। और हमारे उन बच्चों के लिए प्रार्थना है जो अपने माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करते हैं, प्रभु आप उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करेंगे, क्योंकि पिताजी आपका वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करेंगे। आज हमारी आपसे प्रार्थना है कि हम सबको इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा से बहुतायत से आशीष प्रदान करें। हम धन्यवादित हैं कि आपने हम सबसे बातचीत किया है, आपने हमारी सहायता की है। आने वाले समय में जब हम इस पुस्तक से आगे अध्ययन करते हैं, आप हमारी सहायता करें और मदद करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
प्रेम का सागर तू है गहरा, जिसको खोजे ये मन मेरा,
इतना पावन नाम है तेरा, पल पल तुझको सब तुझ मेरा,
तू है यीशु, तू है, तू है, तू ही प्रभु।